लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि शिक्षक विश्वसनीय गवाह बने, प्रतिस्पर्धा के बजाय भ्रातृत्व सिखाएं और सबसे कम उम्र के लोगों एवं सर्वाधिक कमजोर लोगों की मदद करें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया संत पापा फ्रांसिस का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। वैटिकन स्थित संत पेट्रस महागिरजा घर के प्रांगण में रविवार 26 फरवरी को संत पापा फ्रांसिस ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया, जिसके पूर्व उन्होंने विश्वासियों को संबोधित कर 40 काल के आध्यात्मिक संघर्ष पर चर्चा की तथा बतलाया कि यीशु ने किस तरह निर्जन प्रदेश में शैतान पर विजय पाई। उन्होंने कहा कि उसी तरह हम भी प्रलोभन पर विजय पा सकते हैं यदि हम ईश्वर वचन का सहारा लें। संत पापा ने विश्वासियों का अभिवादन करते हुए कहा,
cari fratelli e sorelle, buongiorno.
प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात।
Il Vangelo di questa prima domenica del Quaresima ci presenta Gesù nel deserto tentato dal diavolo.
40 काल के इस पहले रविवार का सुसमाचार पाठ हमारे लिए यीशु के निर्जन प्रदेश में शैतान द्वारा परीक्षा लिए जाने को प्रस्तुत करता है। शैतान का अर्थ है बांटने वाला। उसका नाम ही बतलाता है कि वह क्या करता है, अर्थात वह अलग करने वाला है। यीशु को प्रलोभन देने के द्वारा वह विभाजित करने की कोशिश करता है। तब संत पापा ने यह देखने के लिए विश्वासियों को आमंत्रित किया कि शैतान किससे विभाजित करने की कोशिश करता है और कैसे करता है। संत पापा ने कहा,
Vediamo allora da chi lo vuole dividere il diavolo a Gesù?
शैतान यीशु को किससे अलग करने की कोशिश करता है। प्रलोभन दिए जाने के कुछ ही समय पहले यरदन नदी में बपतिस्मा ग्रहण करते हुए पिता के द्वारा यीशु पुकारे गए थे,
Il figlio mio l'amato,
तू मेरा प्रिय पुत्र है, और पौत्र आत्मा कपोत के रूप में उनके ऊपर उतरा था। इस तरह सुसमाचार हमारे लिए तीन ईश्वरीय जनों को प्रस्तुत करता है जो प्रेम में एक दूसरे से संयुक्त है। इतना ही नहीं, यीशु स्वयं कहते हैं कि वे इस दुनिया में आए ताकि वे हमें खुद के साथ और पिता की एकता में सहभागी बना सकें। शैतान इसके बदले इसके ठीक विपरीत करता है। वह यीशु को पिता से अलग करने और उन्हें हमारे लिए एकता के मिशन से भटकाने की कोशिश करता है। आइए हम देखने की कोशिश करें कि वह कैसे ऐसा करता है। शैतान यीशु की मानवीय स्थिति का फायदा उठाता है। 40 दिन उपवास करने के कारण यीशु कमजोर और भूखे थे। तब शैतान उन्हें तीन प्रभावकारी जहर देने की कोशिश करता है ताकि उनके एकता के मिशन से लकवाग्रस्त करते। ये जहर हैं आसक्ति, अविश्वास और सत्ता। पहला, भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति का जहर। जरूरतों के लिए प्रेरक तर्कों के साथ शैतान यीशु को समझाने की कोशिश करता है।
Hai fame, perché devi digiunare?
आप भूखे हैं, आपको क्यों उपवास करना है? अपनी आवश्यकता पर ध्यान दें और इसे पूरा करें। आपके पास अधिकार और सामर्थ्य है, पत्थर को भी आप रोटी बना लीजिए। दूसरा जहर है अविश्वास। शैतान कहता है, क्या आपको यकीन है कि पिता आपके लिए अच्छी चीजें चाहते हैं? उनकी जांच कीजिए, उन्हें ब्लैकमेल कीजिए और मंदिर के ऊपर से नीचे कूद जाइए और उनसे जो चाहते हैं करवाइए। और अंत में तीसरा है सत्ता। शैतान कहता है, आपको पिता की आवश्यकता नहीं है, उनके वरदान की प्रतीक्षा क्यों करते हैं? दुनिया के अनुसार चलिए, सब कुछ अपने लिए कीजिए और आप शक्तिशाली हो जाएंगे। संत पापा ने कहा कि यह खतरनाक है, लेकिन हमारे लिए भी ऐसा होता है। भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति, अविश्वास और सत्ता की प्यास, ये तीन बड़े और खतरनाक प्रलोभन हैं। जिनका प्रयोग शैतान हमें पिता से अलग करने और आपस में एक दूसरे के भाई बहन नहीं होना महसूस कराने के लिए करता है। इस तरह वह हमें एकाकीपन एवं निराशा की ओर ले जाता है। उसने यीशु के साथ ऐसा करना चाहा और वे हमारे साथ भी ऐसा करते हैं, किंतु यीशु प्रलोभन पर विजय पाते हैं। संत पापा ने कहा, किस प्रकार? शैतान से विवाद करने से इनकार करने और ईश्वर के वचन से उत्तर देने के द्वारा। यीशु ने धर्म ग्रंथ के 3 वाक्यों का हवाला दिया, जो चीज वस्तुओं की आसक्ति से मुक्त होने, विश्वास और ईश्वर की सेवा पर आधारित है। ये 3 वाक्य प्रलोभन का विरोध करते हैं। वे शैतान के साथ वार्तालाप नहीं करते। संत पापा ने विश्वासियों से कहा,
Non dialoga mai col diavolo.
आप भी शैतान के साथ तर्क ना करें। उनके साथ समझौता कर प्रलोभन से बचा नहीं जा सकता। इस तरह यीशु ईश्वर के साथ हमारी एकता की रक्षा करना सिखाते हैं और हमें अलग करने वाले के आक्रमण से बचने के लिए एकता की आवश्यकता है। तब संत पापा ने विश्वासियों को चिंतन हेतु प्रेरित करते हुए कहा, ईश वचन का मेरे जीवन में क्या स्थान है? क्या मैं इसे अपने आध्यात्मिक संघर्ष के रूप में परिणत करता हूँ? जब मुझे प्रलोभन आते हैं तो मैं ईश वचन से कोई वाक्य की मदद क्यों नहीं लेता हूँ? जब प्रलोभन आता है तो क्या मैं प्रार्थना करता हूँ? क्या मैं ईश वचन का पाठ करता, अथवा क्या मैं ख्रिस्त की कृपा पर भरोसा रखता हूँ? उन आवाजों के बीच जो हमारे भीतर हलचल मचाती हैं, ईश्वर के कल्याणकारी वचन की गूंज सुनाई देगी। तब कुमारी मरियम से प्रार्थना करने का आग्रह करते हुए संत पापा ने कहा, माता मरियम, जिन्होंने ईश वचन का स्वागत किया और अपनी दीनता से अलग करने वाले की घमंड को हराया, 40 काल के आध्यात्मिक संघर्ष के दौरान हमारा साथ दे। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरित आशीर्वाद दिया।
Angelus Domini nuntiavit Mariae
et concepite de Spiritu Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
रविवार को देवदूत प्रार्थना के बाद संत पापा ने नए सिरे से अपील की और पौत्र भूमि बुर्किना फासो एवं भूमध्य सागर में हिंसा के अनगिनत पीड़ितों के लिए प्रार्थना की और शांति की अपील की, जहां बहुत सारे अप्रवासी डूब जाते हैं क्योंकि वे इसे पार करने की खतरनाक यात्रा करते हैं। संत पापा ने कहा, पौत्र भूमि से परेशान करने वाली खबरें आ रही हैं। कई लोग मारे गए हैं, यहाँ तक कि बच्चे भी। हिंसा की इस कुंडली को कैसे रोका जा सकता है? इसके बाद संत पापा ने एक बार फिर से अपनी अपील दोहराई। मैं नफरत और प्रतिशोध पर बातचीत को मजबूत करने के लिए अपनी अपील दोहराता हूँ और मैं फिलिस्तीनियों और इसराइलियों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मदद से भाईचारा एवं शांति का मार्ग खोज सकें। संत पापा फ्रांसिस ने बुर्किना फासो की स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की, जहां आतंकवादी हमले होते रहते हैं। संत पापा फ्रांसिस ने देवदूत प्रार्थना के बाद एक बार फिर सभी लोगों को उस प्यारे देश के लोगों के लिए प्रार्थना करने हेतु आमंत्रित किया, इस उम्मीद से कि जिस हिंसा को वे लगातार झेल रहे हैं वह लोकतांत्रिक न्याय और उनकी यात्रा में शांति की आशा खोने का कारण न बने। पश्चिम अफ्रीकी राष्ट्र में हाल ही में तथाकथित इस्लामिक स्टेट समूह ने देश के उत्तरी भाग में एक सैन्य काफिले पर घात लगाकर 70 से अधिक सैनिकों को मारने, दर्जनों को घायल करने और 5 लोगों को बंधक बनाने की जिम्मेदारी ली थी। उसके बाद संत पापा ने भूमध्य सागर पर एक और जहाज डूबने की खबर साझा की। उन्होंने बतलाया कि रविवार को इटली में कलाब्रिया के तट पर उत्तरी अफ्रीका के प्रवासियों को ले जा रही एक नाव पलट गई और दोपहर तक कई बच्चों के शवों सहित 40 शव बरामद किए गए थे। संत पापा ने कहा, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके लिए जो खोए हुए हैं और उनके लिए जो बचाए गए हैं। संत पापा ने उन सभी लोगों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया जो बचाव कार्यों में भाग ले रहे हैं, साथ ही जो शरणार्थियों का स्वागत करते हैं। उन्होंने प्रार्थना की कि कुंवारी मरियम उन्हें सहायता प्रदान करे। तत्पश्चात संत पापा ने उपस्थित लोगों से कहा कि वे रूसी आक्रमण की शुरुआत के एक साल बाद यूक्रेन को ना भूलें। साथ ही कहा कि भयंकर भूकंप के शिकार सीरिया और तुर्की के लोगों को भी याद करें। और अंत में उन्होंने अपनी आध्यात्मिक साधना के दौरान अपने लिए प्रार्थना का आग्रह करते हुए सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की।
Non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
ईश्वर मेरा महान है, उसके बिना जीवन अधूरा है। परमेश्वर मेरा महान है, उसके बिना जीवन अधूरा है। जीऊंगा मरूंगा मैं उसके लिए, मैं सब कुछ करूंगा उसके लिए। जीऊंगा मरूंगा मैं उसके लिए, मैं सब कुछ करूंगा उसके।
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस 28 से 30 अप्रैल 2023 तक हंगरी की प्रेरितिक यात्रा करेंगे। वाटिकन प्रेस कार्यालय के निदेशक मतेओ ब्रूनी ने सोमवार को एक बयान में घोषणा की। नागरिक और कलीसियाई अधिकारियों के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए संत पापा फ्रांसिस हंगरी की प्रेरितिक यात्रा करेंगे। संत पापा की यह यात्रा विदेश में 41वीं प्रेरितिक यात्रा और उनके परमाध्यक्ष काल की शुरुआत के बाद से 61वें देश की यात्रा को चिन्हित करेगी। अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान संत पापा फ्रांसिस शरणार्थियों और गरीब लोगों के साथ साथ धन्य लेजलो बेथानी स्ट्रीटमैन संस्थान के बच्चों के साथ मुलाकात करेंगे। जैसा कि प्रथागत है, संत पापा फ्रांसिस हंगरी के अधिकारियों, नागर समाज और राजनयिक कोर को संबोधित करेंगे। संत पापा फ्रांसिस धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, उपयाजकों, धर्म संघियों, गुरुकुल के छात्रों और प्रेरितिक कार्यकर्ताओं, शैक्षणिक और सांस्कृतिक दुनिया के प्रतिनिधियों एवं युवाओं के साथ मुलाकात करेंगे। आधे से अधिक हंगेरियन क्रिश्चियन हैं और कम से कम 37% आबादी कैथोलिक है। स्थानीय स्रोतों के अनुसार यूक्रेन में युद्ध की शुरुआत के बाद से लगभग 1 मिलियन यूक्रेनी नागरिकों ने शरणार्थियों के रूप में हंगरी की यात्रा की है। 12 सितंबर 2021 को 52वीं अंतर्राष्ट्रीय यूकरिस्ट कांग्रेस के समापन के लिए मिस्सा का अनुष्ठान करने के लिए स्लोवाकिया जाते समय संत पापा ने देश की राजधानी बुदापेस्ट में एक संक्षिप्त पड़ाव बनाया था। उधर बैंकॉक में 24 से 26 फरवरी तक चल रहा सिनोडालिटी पर एशियाई महाद्वीपीय सभा का अंतिम दिन प्रतिभागियों के बीच साझा करने के क्षण के साथ शुरू हुआ। फिलीपींस कलुकान के धर्माध्यक्ष पाब्लो वर्जिलियो डेविड, ताइवान की चीनी क्षेत्रीय महाधर्माध्यक्ष सम्मेलन के सिनोडल टीम के सदस्य तेरेसा वू और फिलीपींस से धर्म सभा के धर्मशास्त्रीय आयोग के सदस्य प्रोफेसर स्टेला पाडिला ने दिन की कार्यवाही का संचालन किया। धर्म सभा पर सिनोड के जनरल रिलेटर कार्डिनल जीन क्लाउड होलरिक ने दिन की कार्यवाही को उन्मुख करने के लिए 3 बिंदु प्रदान किए। कार्य समूहों में से एक द्वारा किए गए अवलोकन पर ध्यान केंद्रित करते हुए कार्डिनल ने कहा, एक छोटे समूह ने तालमेल, एकजुटता और सिम्फनी के बारे में बात की। मैं सिम्फनी शब्द को चुनता हूँ। यदि पियानो का ट्यून नहीं किया गया तो यह एक भयानक सिम्फनी होगी। कर्कश आवाज होगा। सिनोडल मन परिवर्तन वह तरीका है जिसे हमें अपने उपकरणों को ट्यून करना पड़ता है। मन परिवर्तन हमेशा मसीह में मन परिवर्तन होता है। इस मन परिवर्तन के लिए हमें अपने अंधकार को विनम्रता के साथ छोड़ने की आवश्यकता है, ताकि एक दूसरे को देखें और हम में से प्रत्येक में बपतिस्मा की गरिमा देखें। उन्होंने कहा, बपतिस्मा के साथ शुरुआत समन्वय के बजाय बपतिस्मा पर आधारित ख्रिस्तीय एकता का नया वसंत खोलेगा। यह देखते हुए कि संप्रदाय बपतिस्मा में ख्रिस्तीय धर्म की पहचान को आधार बनाता है। अपने तीसरे और अंतिम बिंदु में कार्डिनल होलरिक ने सृष्टि के सृजन पाठ की धर्म सभा में व्याख्या प्रदान की। उन्होंने कहा, पाठ को पुरुष या महिला या विवाह और पारिवारिक संस्था के रूप में देखने के बजाय पाठ की धर्म सभा में व्याख्या यह है कि मानवता बनाई गई थी। कलीसिया के रूप में हम उस मानवता का हिस्सा हैं और हमें मानवता की सेवा करने के लिए बुलाया गया है। एक धर्म सभा में कलीसिया ऐसी कलीसिया है जो मसीह द्वारा दिए गए मिशन यानी सुसमाचार की घोषणा करती है, और यदि हम संसार की सेवा नहीं करते हैं तो कोई सुसमाचार की घोषणा में विश्वास नहीं करेगा। एक सिनोडल कलीसिया दुनिया को जो फल दे सकती है वह अन्य धर्मों के साथ संवाद में और डिजिटल संस्कृति द्वारा प्रचारित समुदाय को व्यक्तिवाद से बाहर लाने के लिए प्रदर्शित किया जाएगा। कार्डिनल ने कहा, इसके लिए हमारे समय में परिवर्तन की आवश्यकता है, क्योंकि हम डिजिटल युग के वर्ष जीरो में हैं और युवा लोग पहले से ही वर्ष 0.1 में हैं, और कभी कभी हम धर्माध्यक्ष डिजिटल युग के पहले यानी -0.1 में रहते हैं। अपनी अंतिम टिप्पणी में कार्डिनल ने प्रतिभागियों को याद दिलाया, हम सभी मसीह के साथ रास्ते में हैं। उन्होंने पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन का आह्वान किया और अपना संदेश अंत करते हुए कहा, एशिया की कलीसिया के पास दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है। उधर 26 फरवरी को भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:30 बजे शिलोंग से आ रहे ओवर स्पीड ट्रक ने अपना नियंत्रण खो दिया और शिलोंग की ओर जा रहे बोलेरो को टक्कर मारते हुए दूसरी लेन में कूद गया। बोलेरो के सभी 6 लोगों की मौके पर मृत्यु हो गई। खबरों के मुताबिक सभी मृतकों की पहचान कर ली गई है। बोलेरो में बारामा संत जोन्स एचएस स्कूल के प्रिंसिपल और पल्ली पुरोहित फादर मैथ्यू दास, सिस्टर मेलामाइन डेंटिस, सिस्टर प्रोमिला तिर्की, सिस्टर रोसी नोंग्राम मायरन शिक्षक और ड्राइवर थे। शवों को पोस्टमार्टम के लिए नोगम्फो सिविल अस्पताल ले जाया गया है। असम ख्रिस्तीय मंच ACF के प्रवक्ता एलन ब्रूक्स ने प्रेस रिलीज में कहा कि ACF लापरवाह ड्राइविंग के कारण निर्दोष लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मंच ने मेघालय सरकार से दुर्घटना के कारणों की गहन जांच करने और पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग की है। ACF अपने प्रियजनों के खोने पर शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है, जिसमें बोंगाई गांव धर्म प्रांत और फतिमा धर्म बहनों के धर्म समाज शामिल हैं। उधर दक्षिणी अफ्रीकी देश इस्तावनी में मंजीनी के धर्माध्यक्ष ने देश में बढ़ती हिंसा के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की, जो पहले से ही रक्तपात का कारण बन चुकी है और संघर्ष बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ सकती है। वकील और मानव अधिकार कार्यकर्ता श्री थुलानी मेसेको की 21 जनवरी को इस्तावनी की राजधानी एमबिबाने के पास उनके घर में निर्मम हत्या कर दी गई थी। अधिकारियों ने हत्या की जांच करने का वादा किया था, लेकिन एक महीने से अधिक समय से कोई जवाब नहीं दिया गया है और पूरे दक्षिणी अफ्रीका में न्याय की मांग बढ़ रही है। वाटिकन रेडियो से बात करते हुए मंजीनी के धर्माध्यक्ष जोस लुइस ने देश में फैल रही अशांति और बेचैनी के लिए अपनी आशंका व्यक्त की, और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।